તારીખ 2/12/1993 શ્રી સમયસર કળશ ટીકા શ્લોક નંબર 120 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 155.
આશ્રવ અધિકાર હૈ, આશ્રવ તત્વ કિસકો કહેના ઓર આશ્રવ તત્વ કિસકો હોતા હૈ ઓર કિસકો નહીં હોતા હૈ, इसका स्पष्टीकरण इस अधिकार में मिलता है। आश्रव तत्व शुभ और अशुभ दोनों भाव को आश्रव तत्व कहते हैं। फिर जो पुद्गल आश्रव होता है उसका निमित्त होकर के आता है। प्रयोजन तो अपने भाव से है, पुद्गल से प्रयोजन नहीं है। द्रव कर्म तो जो भाव कर्म को नहीं समझते हैं उनको समझाने के लिए वो बात लेनी पड़ती है। बाकी जो जीव के परिणाम में शुभ और अशुभ भाव होते हैं वो भावाश्रव हैं। और यहाँ यह अधिकार है कि ये मिथ्या दृष्टि को हमेशा होता है, निरंतर होता है, नींद में भी होता है और प्रवृत्ति में तो होता ही है। संसार के जो कार्य हैं, कुटुंब परिवार व्यापार धंधा आदि के, उसमें अशुभ आश्रव होता है और पूजा भक्ति दया दान आदि में शुभ आश्रव होता है। और ये मिथ्या दृष्टि को निरंतर हमेशा हमेशा होता रहता है। सम्यक दृष्टि को नहीं होता है ये प्रकरण चलता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को जो अल्प आश्रव है वो गिनने में नहीं आया। दर्शन मोह का आश्रव नहीं होता है, अनंत अनुबंधी का आश्रव नहीं होता है। और सारे जो कर्म की सेना है उस सैन्य में कोई राजा है तो दर्शन मोह है। तो जिसने राजा को मारा या राजा को जीता उसने फिर सैन्य जीतने का बाकी रहा है वो कहने की जरूरत नहीं है। उसी दृष्टांत से यहाँ लेना कि जिस जो सम्यक दृष्टि है उन्होंने दर्शन को जीत लिया है तो फिर बाकी का कर्म वैसे ही हार जाएंगे और जीव की जीत हो जाएगी, ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता है। इस पद्धति से, इस अभिप्राय से ये अधिकार चलता है। 120 कलश अध्यास शुद्ध नयम उद्धत बोध चिन्हम एकाग्रमेव कलयन्ते सदैव येते रागादिं मुक्त मनसः सततं भवन्तः पश्यन्ति बंध विदुरं समयस्य सारं। जो सम्यक दृष्टि है वो बंध का विदुर हो गया है, उसको बंध नहीं होता। जैसे पति पत्नी में से एक का मृत्यु होने से पत्नी होती तो विधवा होती और पति होता तो विदुर होता है, ऐसे यहाँ सम्यक दृष्टि बंध रहित हुआ है, इसका बंध मर गया है तो बंध विदुरम ऐसा बोले। राग अब क्या कि दर्शन मोह को मारा ने वो राजा है। आठ कर्म में कौन राजा है? दर्शन मोह। चारित्र मोह राजा नहीं है। दर्शन मोह मर जाने से चारित्र मोह पंगु हो जाता है। कितना पंगु हो जाता है कि जैसे किस मनुष्य को कमर टूट जाती है तो 1 किलोग्राम भी वजन उठा नहीं सकता, ज्यादा दफे बैठ नहीं सकता, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, कोई शरीर शक्ति वाला एक काम भी नहीं कर सकता, जिसमें शरीर का शक्ति का प्रयोग हो ऐसा एक काम नहीं कर सकता। ऐसी हालत हो गई सम्यक दृष्टि की, शेष संसार की, जो संसार अवशेष रहा उसकी हालत क्या है कि जिसकी कमर टूट गई है ऐसा मनुष्य जैसी है, ऐसा लेना। इसलिए उसको बंद विदुर कहा, बंद का बंद से वो उसका बंद मर गया, बंद होता था वो मर गया। अर्थ कहते हैं कि ये शुद्धनयम एकाग्रयम एव सदा कलयंती, जो कोई आसन्न भव्य जीव है निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र का समस्त रागादि विकल्प से चित्त का निरोध कर चित्त में निश्चय लाकर अखंडित धारा प्रवाह रूप अभ्यास करते हैं सर्वकाल। क्या है? सम्यक दृष्टि का वर्णन लिया है कि जो आसन भव्य है, अभी इसकी मुक्ति बहुत अल्पकाल में होने वाली है, 2, 4, 6, 8 भव होवे, 10 भव होवे, ये कोई लंबी बात नहीं है। अनंत काल में वो कुछ नहीं है, समझो ना, अनंत काल में काल के समुद्र के आगे एक बिंदु के समान है, कहीं सिंधु कहीं बिंदु, ऐसी बात है। 5-15 भव हो तो उसका कोई गिनती नहीं है, इसलिए उनको यहाँ आसन्न भव्य कहा। क्या करता है वो कि निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र में एकाग्र होता है। शुद्ध नयम एकाग्रम ऐसा लिया है, शुद्ध नय किसको कहते हैं कि निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र है, वो शुद्ध नय का विषय है, इसलिए उसको भी शुद्ध नय कहते हैं। अपना मूल स्वरूप उसमें जो एकाग्र होता है, कैसे एकाग्र होता है कि रागादि विकल्प से, समस्त रागादि विकल्प से चित्त का निरोध कर, मनोनिग्रह हो गया जिसका। सम्यक दृष्टि कब होता है कि कहीं भी इसका मन दौड़ता नहीं है, लगता नहीं है, चौंटता नहीं है, स्वतः ही हर जगह से वो रोक जाता है, अपना राग राग से भी वो हट जाता है स्वतः सहज रूप से, है समस्त रागादि, कोई राग बाकी नहीं रखा, ऐसा समस्त रागादि विकल्प से चित्त का जिसका निरोध हो गया और चित्त में निश्चय लाया और अखंडित धारा प्रवाह रूप अभ्यास करते हैं, इस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होने का, स्वरूप का अनुभव करने का, वो निरंतर सर्वकाल सदा धारा प्रवाह रूप से खंडित नहीं होता उसमें। कि आज प्रयत्न किया था, 1 घंटा किया था, फिर 23 घंटा तो हम काम में लग गए, सो गए, ऐसा नहीं होता। निरंतर उसकी परिणति में पुरुषार्थ चलता है, आत्म स्वरूप में एकाग्र होने में वो प्रमादित होता नहीं है, अप्रमाद पने से अभ्यास करते हैं। कैसा है कि उद्धत बोध चिन्हम, सर्वकाल प्रगट जो ज्ञान गुण वही है लक्षण, जिसका ज्ञानी है वो, उसका स्वरूप ज्ञान सदा ही प्रगट है। कैसा है? सर्वकाल प्रगट, उद्धत का अर्थ लिया है प्रगट, प्रगट कहो या प्रत्यक्ष कहो, क्या वो स्वरूप प्रत्यक्षता में वर्तते हैं, ज्ञानी को स्वरूप प्रत्यक्ष है और ज्ञान में भी अतींद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट है, ऐसा निरंतर है सर्वकाल, मैंने निरंतर ऐसा ज्ञान गुण, मैंने ज्ञान स्वभाव, वो स्वभाव ज्ञान है जो अंतर्मुखी ज्ञान की धारा है, वो स्वभाव ज्ञान की धारा है, उसको ज्ञान गुण कहो या ज्ञान स्वभाव कहो। वही ये लक्षण यानी सुचिन्ह जिसका, यानी स्वरूप जिसका, ऐसा है। क्या करके कि अध्यास, जिस किसी प्रकार मन में प्रतीति ला करके, प्रतीति माने श्रद्धा, जैसा स्वरूप अनुभव में आया है वैसा ही मैं हूँ, ऐसे ही प्रतीति को श्रद्धा कहने में आती है, तो ऐसा श्रद्धा को प्रतीति कहने में आती है। ये स्वरूप श्रद्धा है, स्वरूप ज्ञान और स्वरूप श्रद्धा दोनों जिसको है। तेव समय से सारम पश्यन्ति, वो क्या देखता है क्या अनुभव करता है कि वे ही जीव, ऐसे ही जीव निश्चय से सकल कर्म से रहित अनंत चतुष्टय विराजमान अपना परमात्मा पद, क्या सकल कर्म से जो त्रिकाल रहित है मूल स्वरूप अनंत चतुष्टय से सदा ही विराजमान है। अनंत चतुष्टय मैंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसा जो परमात्मा पद है आत्मा का सदा ही विराजमान है। यहाँ तो जो अधिकार चलता है, जो शास्त्र में शास्त्र वचन है आचार्य के, इसको इसका स्वाध्याय करते हैं अपन। अपन क्या करते हैं, अभी उपदेश नहीं देते हैं। जो हमारे सामने जो कुंदकुंद आचार्य देव का, अमृतचंद्र आचार्य देव का जो वचन है, उस पर अपन स्वाध्याय करते हैं कि सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा है। क्या नहीं, ये सम्यक दृष्टि का स्वरूप की बात चलती है कि सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा है कि ये समय से सारम पश्यन्ति, ये अपने परमात्मा को देखता है, अनुभव करता है। कैसा है अपना परमात्मा, के सकल कर्म से रहित है, अनंत चतुष्टय से विराजमान ऐसा परमात्मा पद है, उसको प्रकट रूप से पाते हैं। देखो पश्यन्ति का अर्थ क्या, प्राप्त करते हैं अनुभव में, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रूप से उनका अनुभव करते हैं। चाहे वो सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो, चाहे सम्यक दृष्टि कोई चांडाल मनुष्य हो, जैन कुल में नहीं जन्मा हो, चाहे वो सम्यक दृष्टि देवलोक का कोई देव हो, या नारक लोक का कोई नारकी हो, सबों की यही स्थिति होती है भीतर में कि वो अपने परमात्मा पद को प्रत्यक्ष पाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं। इसलिए तो बनारसीदास जी ने गाया, शांत दशा तिन की पहचानी, करे कर जोड़ी बनारसी बंधन। कैसे हैं कि वो जिनेश्वर के लघु नंदन है, छोटे पुत्र है, मुनिराज है, वो जिनेश्वर के बड़े पुत्र है, और सम्यक दृष्टि है जिसने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया, वो जिनेन्द्र देव के लघु नंदन है, छोटे पुत्र है। दोनों वो जिनेन्द्र होने वाले हैं आगे जाके, जैसे राजा के पुत्र आगे राजा होने वाले हैं, ऐसे दोनों जिनेन्द्र होने वाले हैं, ऐसी बात है। कैसा पाते हैं कि बंद विदुरम, अनादि काल से एक बंद पर्याय रूप चला आया था, नाना वर्णादि आठ कर्म रूप पुद्गल पिंड उससे सर्वथा रहित है। देखो थोड़ा रखा नहीं, राजमल जी ऐसा लेता है, सम्यक दृष्टि को सर्वथा बंद रहित ही लेता है, लेकिन थोड़ा बंद तो दिखता तो है, तो वो तुम उसको देखते हो वो मत देखो, उसको देखने से तुमको सम्यक दृष्टि का स्वरूप देखने में नहीं आएगा। आचार्य महाराज सम्यक दृष्टि का परिचय करवाते हैं कि जिस परिचय से पहचान हो जाए, मुमुक्षु जीव को अगर सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है, तो उस पहचान से आगे जा करके वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, मुमुक्षु सम्यक दृष्टि बन जाता है, ऐसा पहचान का फल है। और जो सम्यक दृष्टि एक दफे भी बनता है, वो अल्प समय में, अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं बनता। ये खुशी होने की बात है या नाराज होने की बात है, ये राजी होने की बात है, नाराज होने की बात
नहीं है,
नहीं है ऐसी बात है। हमारे सौभाग्यवश ऐसे महान शास्त्र उपलब्ध है आज, ये जो सम्यक दृष्टि की पहचान कराते हैं। वो तो कहने लिखने वाले तो मुनिराज थे। मुनिराज को कौन सी आवश्यकता हुई, जरूरत क्यों पड़ी कि वो सम्यक दृष्टि का वर्णन करते हैं? आश्रव अधिकार में, संवर अधिकार में, निर्जरा अधिकार में, और सभी अधिकार में यही बात लिया है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है, इसका स्वरूप का वर्णन आचार्य क्यों करते हैं? आचार्य तो छठे गुण स्थान में और सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में है। छठे गुण स्थान वाले आचार्य महाराज चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्यों दर्शाते हैं? थोड़ा विचार करने जैसी बात है कि जगत के मिथ्या दृष्टि जीव, अनंत अनंत मिथ्या दृष्टि जीव जगत में है, अगर वो सम्यक्त्व का स्वरूप समझ ले तो सम्यक दर्शन होकर के निर्वाण दशा तक पहुंच जाएंगे। जो कमी रह गई है वो सम्यक दर्शन सम्यक्त्व को नहीं समझने की कमी रह गई है। सम्यक्त्व को समझे तो देव गुरु शास्त्र सबका स्वरूप समझ में आ जाए, सबका स्वरूप समझ में आ जाए। उसको नहीं समझे तो एक का भी स्वरूप नहीं समझ में आएगा। ऐसी एक महत्वपूर्ण बात है। जो जैन होते हैं कुल धर्म से, वो जैन परमेश्वर को मानते हैं, जैन गुरु को मानते हैं और जैन शास्त्र को मानते हैं। जो जैन होते हैं उनके देव गुरु शास्त्र भी जैन होते हैं, हाँ, और मानते हैं। लेकिन कैसे मानते हैं? भोग संज्ञा से मानते हैं या इसका सम्यक्त्व को पहचान करके मानते हैं? ये सवाल है हमारे सामने। क्या सवाल है? हम अभी जैन मंदिर में ही बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जैन मंदिर में तो बैठे हैं। तो घर से जैन मंदिर में आए इधर, और हम अपने को मानते भी हैं कि हम तो जैन हैं, हम कोई दूसरे नहीं है, हम तो जैन हैं। लेकिन सच्चा जैन है या कहलाने वाले जैन है? पड़ोस में रहते हैं, उसको कोई मामा कहते हैं, कोई चाचा कहते हैं, कोई मौसा कहते हैं, कुछ ना कुछ व्यवहार करते हैं ना। ऐसे जैन पना का व्यवहार हमारे से होता है, ये लोग जैन है क्योंकि जैन मंदिर में जाते हैं, दूसरे मंदिर में नहीं जाते। आजकल तो जाते हैं माँ लक्ष्मी वगैरह वगैरह में, सब जाने लग गए हैं अंबाजी वगैरह में। हाँ, ओ क्या आजकल घंटाकरण को मानते हैं। आजकल ये गड़बड़ बढ़ गई है, लेकिन ऐसे गड़बड़ वाले हम लोग नहीं है, इसलिए हम तो हमारी बात करें, दूसरों की टिप्पणी नहीं करें, टीका टिप्पणी दूसरों की नहीं करके अपने विचार करें कि सच्चा जैन किसको कहते हैं, कि जो देव गुरु शास्त्र का पहचान करके श्रद्धा करे उसको। जिसको पहचान नहीं है वो सच्चे जैन नहीं है। बारदाना पर लिखा है शक्कर, शक्कर का बारदाना खाली हो जाए और उसमें भरे करियाता, तो करियाता मीठा हो जाएगा?
नहीं।
हाँ, ऐसे बार में लिखे
जैन
कि हम फलाना फलाना जैन है, और भीतर में जैन का नाम निशान और गंध भी नहीं,
नहीं
होवे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहचान कराते हैं कि जो सम्यक दृष्टि को पहचानेगा वो सम्यक्त्व को पहचानेगा, जो सम्यक्त्व को पहचानेगा वो गुरु को पहचानेगा, जो सम्यक्त्व को पहचानेगा वो देव को पहचानेगा, और जो सम्यक को पहचानेगा वो शास्त्र सिद्धांत को पहचानेगा।
बराबर।
इसलिए सम्यक्त्व पूर्वक यहाँ पहचान कराएगी है, यही कारण है, पहचान कराने का वही कारण है। कैसे है सम्यक दृष्टि? कि अनादि काल से जो बंध चला आया था वो ज्ञानावरणादि कर्मबद्ध पुद्गल पंड से सर्वथा रहित है। हम तो उसको कर्म रहित देखते हैं। राजमल जी क्या कहते हैं, हम सम्यक दृष्टि को ग्रस्त नहीं देखते, चार गति के कोई गति वाले भी नहीं देखते, स्त्री पुरुष भी नहीं देखते। स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी हो सकता है ना, सम्यक दृष्टि तो नपुंसक भी हो सकता है, कुछ नहीं देखते। बनिया है या चांडाल है वो भी नहीं देखते, हम तो उसको बंध रहित देखते हैं। देखो क्यों क्यों ऐसा लिया है, हाँ वो करणानुयोग में, अध्यात्म में ऐसा नहीं है। क्या वो हिसाब किताब गुणस्थान का करणानुयोग का विषय है, और इधर करणानुयोग नहीं चलता है, ये अध्यात्म का प्रकरण चलता है। तो आप कहेंगे कि हमको समझाओ ये कैसे बंध रहित कहते हैं, हमारी दृष्टि तो बनिया लोग है, हिसाब किताब लगाने की हो जाती है, इसलिए जल्दी से करणानुयोग हमारी नजर में आ जाता है। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को कैसा देखता है, हैं? परमात्मा पद स्वरूप देखता है, अनुभव करता है, तो वो खुद अपने को तो परमात्मा स्वरूप अनुभव करे और कर्म रहित स्वरूप का अनुभव करे, और हम उसको माने कि वो कर्म सहित है, तो इसका अनुभव और हमारी मान्यता विरुद्ध हो गई। हो गई कि नहीं विरुद्ध, हाँ। जब वो अपने आप को स्वयं को कर्म रहित अनुभव करता है तो फिर हमको वो जैसा वो अपने आप को अनुभव करता है ऐसा ही देखने की जरूरत है, अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है। या हम कौन कहने वाले वो कर्म सहित है, जब वो अपने आप को परमात्मा पद स्वरूप अनुभव करते हैं तो हम कौन कहने वाले के वो कर्म सहित है। ज्ञानी की दृष्टि में वो कर्म रहित है, वो स्वयं है ज्ञानी, उसकी दृष्टि में भी वो कर्म रहित है। और दूसरे ज्ञानी राजमल जी लिखते हैं, वो राजमल जी तो उल्टिका लिखी इसलिए उसका नाम देते हैं, लेकिन एक ज्ञानी का अभिप्राय वो तीनों काल के अनंत ज्ञानी का अभिप्राय, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि कर्म रहित है, कर्म सहित नहीं है। जा क्योंकि वहां तो अध्यात्म में तो अनुभव का आधार लिया जाता है, अध्यात्म में गुणस्थान का आधार लिया जाता नहीं है। अध्यात्म की गिनती आत्मा आश्रय से जो अनुभव हुआ उससे होती है, यहाँ तो करणानुयोग का प्रकरण चलता ही नहीं है, इस अपेक्षा को क्यों बीच में ले रहे, ऐसी बात है। नहीं, राग निमित्तत्व का सवाल नहीं है, यहाँ तो वो जैसा अपने आप को अनुभव करता है कि मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करता है कि नहीं भीतर में, तो वो ऐसा अनुभव करे और हम उसको दूसरी दृष्टि से क्यों देखें। जैसे एक दरिद्री है बाहर में, उसके घर में से निधान निकला, कितना अरबों के अरबों रुपयों का निकला, अब वो अपने को क्या अनुभव करता है, है? कि मैं तो मेरे पास तो अथाग संपत्ति है, क्या अनुभव करता है वो,
अथाग संपत्ति है
मेरे पास तो, अथाग संपत्ति है, और बाहर में कोई लूट नहीं लेवे इसलिए उसने कोई फेरफार नहीं किया, जैसा पहले रहता था दरिद्र अवस्था में सादगी से, वैसे ही सादगी से वो रहने लगा। उन्होंने देखा कि मैं तो जैसा दरिद्र हूं वैसे सारे गांव में, ये तो दरिद्री का ही गांव है, अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास अधाक संपत्ति है तो मैं तो लूटा जाऊंगा, मैं तो लूटा जाऊंगा, तो किसी को अपनी संपत्ति बताता नहीं है और सादगी से रहता है, बाद में किसी को नहीं देगा ख्याल भी आने देता कि मेरे पास उतनी संपत्ति है, लेकिन वो अनुभव क्या करता है,
निधान वाला है
कि मैं तो बहुत संपन्न हूं, मेरे पास तो अथाग संपत्ति, अथाग लक्ष्मी है, तो हमको जब पता चल गया कि ऐसी बात है तो हम उसको दरिद्र की दृष्टि से देखेंगे या संपत्तिवान देखेंगे, क्या देखेंगे? संपत्तिवान देखेंगे। यही दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को देखने की दृष्टि चाहिए।
देखने वाले भी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए।
देखने वाला उत्कृष्ट मुमुक्षु हो तो देख सकता है, और सम्यक दृष्टि है तो देख सकता है। दो 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 प्रकार के जीव देख सकते हैं। एक तो सम्यक दृष्टि होवे वो, और एक उत्कृष्ट मुमुक्षु होवे वो। अगर उत्कृष्ट मुमुक्षु होकर के ऐसा देखेगा तो वो भी अल्पकाल में आगे जा करके सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसी बात है, महात्मा ने ओळखे लिए थे। ऐसी बात है, क्यों दर्शाते हैं मुमुक्षु के लिए ये शास्त्र लिखा है? समयसार किस लिए लिखा है? मुमुक्षु के लिए लिखा है कि उनको सम्यक दृष्टि का स्वरूप दिखाते हैं, दर्शाते हैं। क्योंकि वो मुमुक्षु सम्यक दृष्टि को पहचान करके खुद ही सम्यक दृष्टि हो जाए तो इसका संसार का निवेड़ा आ जाए, उसका जन्म मरण छूट जाए, फिर उसको जन्म मरण रहने वाला नहीं है। यही कारण है आचार्य महाराज छठे गुण स्थान में जंगल में बैठे बैठे ये मुमुक्षु के लिए शास्त्र लिख रहे हैं। देखो इसकी करुणा है। वो चार भावना आती है ना, चार भावना, मैत्री है, मैत्री कारुण्य, मैत्री प्रमोद, कारुण्य और उपेक्षा। उपेक्षा को क्या कहते हैं? मध्यस्थ, मध्यस्थ, मध्यस्थ रहना। तो मैत्री तो सभी जगत के जीवों के प्रति, क्यों? कि हमारा कोई वैरी जगत में है नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब मेरी जाति के जीव है, कोई मेरे वैरी हो सकते नहीं है, तो सब मेरे समान है। इसलिए मेरे मित्र, मित्र समानता में मैत्री होती है।
दुश्मनी नहीं होना उससे बड़ा तो मैत्री है।
हाँ,
सबे सब सब
सत्वेशु मैत्री गुणिशु प्रमोद, सत्वेशु मैत्री गुणिशु प्रमोद माध्यस्थ भावम। मैत्री भाव पूरे जगत के सभी जीव के साथ, निगोद में है उसके साथ भी, कोई बाकी नहीं ऐसे। क्योंकि सत्वेशु हमारा जैसा सत्व है, जैसी सत्ता मेरी आत्मा की है और जैसा आनंद गुण का सत्व मेरे स्वरूप में है, ऐसा सत्व सभी जीव में है। और प्रमोद दूसरे के थोड़े भी गुण दिखे तो प्रमोद करे, और जगत के दुखी जीवों के प्रति कारुण्य वृत्ति है। ये कारुण्य वृत्ति आचार्य महाराज में दिखने में आती है। वो तो बहुत सुखी है, वो तो जंगल में प्रचुर शांति में और प्रचुर आनंद में झूलते हैं, फिर भी जगत के दुखी जीवों को देख करके उनको करुण कारुण्य वृत्ति उत्पन्न हुई, तो मुमुक्षुओं के लिए शास्त्र लिखा। शास्त्र लिखा है मिथ्या दृष्टियों के लिए, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो जाए इसलिए। ऐसी बात है। क्या हुआ? भावार्थ इस प्रकार है कि सकल कर्म के क्षय से हुआ है शुद्ध, प्राप्ति उसको हो जाएगी, इसलिए वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते करते उनको सकल कर्म का क्षय हो जाएगा। अभी भले ही अनंतानुमंदी और दर्शन मोह नहीं गया है, बाकी जो चारित्र मोह के जो तीन प्रकृति हैं, अप्रत्याख्यान वर्णी, प्रत्याख्यान वर्णी और संजलन, ये तो बिल्कुल कमजोर हो गई, बिना ताकत वाली हो गई, तो वो तो निकल जाएगी, सकल कर्म का क्षय हो जाएगा। कैसे हैं वे जीव? कि रागादि मुक्त मनसः, राग द्वेष मोह से रहित है। परिणाम जिनका ऐसा है उसको राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं और मोह भी नहीं है। देखो गिनते ही नहीं रहे वो, चारित्र मोह के राग द्वेष मोह इसको नहीं गिनते इधर। क्यों? तो उतने कमजोर है कि जिसके जिसके मूल जल गए, उसके पत्ते हरे रहे तो भी वो हरे रहने वाले नहीं, वो सूख जाएंगे, क्योंकि मूल उसकी कट गई है, जल गई है, तो फिर वो पेड़ जिंदा रहने वाला नहीं है। इससे उसको रहित ऐसे कहते हैं। और कैसे हैं? कि सततम भवंतः, निरंतर पने से ऐसे ही है। देखो निरंतर ऐसे ही है, जब वो उदय के कार्य में लगे हैं तब ही ऐसे ही है। निरंतर पने से भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि सर्वकाल प्रमादी रहता है, कभी एक जैसा कहा वैसा होता है, सो इस प्रकार तो नहीं है। सदा सर्वकाल शुद्धपणे रूप रहता है या शुद्धपणे रूप अनुभव करता है, अपने शुद्ध स्वरूप को सदा ही अनुभव करता है। निर्विकल्प अनुभव भले ही कम हो, कभी कभी हो, लेकिन अपनी परिणति में तो धारावाही निरंतर अनुभव करता है, वही मुख्य परिणति है, बाकी क्या अल्प अंश को गिनने में नहीं आता।
संकल्प नहीं होता है,
संकल्प विकल्प होता है, उससे वो भिन्न रहते हैं, इसलिए उसको होता है ऐसा गिनते नहीं है। क्या है? सम्यक दृष्टि का स्वरूप ऐसा है। निरंतर निरंतर क्यों कहते हैं? संकल्प विकल्प तो दिखने में आता है, फिर क्यों ऐसा कहता है? संकल्प विकल्प तो दिखने में आता है क्योंकि उससे भिन्न अनुभव करता है अपने को, और अपने को तो शुद्ध स्वरूप अनुभव करता है। संकल्प विकल्प रूप मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं करता है। जैसे कोई अपने मकान को बेच देता है, मकान को बेच दिया, पैसा भी ले लिया, और बेचान के दस्तावेज पर साइन अपना दस्तखत भी कर दिया, लेकिन जिसको बेचा उसको बोला, देखिए मैं दूसरे घर में मेरा सामान ट्रांसफर करने में मुझे 5-15 दिन लग जाएगा, या मुझे मेरा मकान दूसरा बन रहा है उसको 4-6 महीना लगने वाला है, जब मेरा मकान बराबर तैयार हो जाएगा इस वहां तक मैं रहूंगा। अब वो मकान में वही मकान में रहता है, क्या हालत है उसके?
मेरा नहीं है।
अनुभव क्या करता है, हमारा ये सवाल है। वो बेचा नहीं था, उस पहले भी वो रहता था, बेचने के बाद भी रहता है, पहले भी अनुभव करता था, बाद में भी अनुभव करता है, क्या फर्क है बताओ?
मेरा
कि ये मेरा घर में मैं रहता हूँ, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, पहले ऐसा अनुभव करता है, बाद में कि ये मेरा घर है ही नहीं, ये मेरा घर है ही नहीं, कल धरती कंप हो जाए और मकान गिर जाए उसको क्या होगा?
कुछ नहीं, मेरा है नहीं।
रहता है तो भी मेरा नहीं, वो मकान नहीं रहता है तो भी मेरा नहीं है।
कैसा भी प्रसंग आए नहीं जानता है,
अनुभव क्या करता है?
मेरा नहीं,
ऐसा अनुभव रहता हुआ भी वही अनुभव करता है कि मेरा नहीं है। ऐसे मिथ्यात्व अवस्था में भी संकल्प विकल्प होता है और सम्यक्त्व अवस्था में भी संकल्प विकल्प होता है। मिथ्यात्व अवस्था में संकल्प विकल्प मेरा है ऐसा अनुभव होता है, और सम्यक्त्व अवस्था में संकल्प विकल्प मेरा नहीं है ऐसा अनुभव होता है। शरीर भी मेरा नहीं और रागादि विकल्प भी मेरा नहीं, फिर कुटुंब परिवार मेरा नहीं है वो कहने की जरूरत नहीं है, उसमें तो अपना तो दिखता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को लड़का अपना दिखता है, पति को पत्नी अपनी दिखती है, पत्नी को पति अपना दिखता है, सम्यक दृष्टि को वो दिखता है लेकिन अपना दिखता नहीं है, उतना फर्क है। क्या फर्क है? अपना नहीं दिखता है, दिखता है जरूर, वही दिखता है। वो कब वो है? मिथ्यावत अवस्था में जो अपने कुटुंब परिवार के सदस्य थे वही सम्यक अवस्था में रहे, भीतर में अवस्था पलटी है, बाहर में कुछ नहीं पलटा, उदय वो का हो रहा, भीतर में पलट गया। तो पहले अपनापन छूट गया, वैसे अपना था नहीं, मर जाने के बाद क्या बोलता है कि अपना होता तो कैसे चला जाता, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो वो टाइम पर बोलते क्यों? कि वास्तविकता नजर आती है, वास्तविकता का वहां अनुभव होता है, वहां कोई सम्यक्त्व नहीं होता है वहां तो वास्तविकता का अनुभव होता है कि ये परिस्थिति थी वो बनके रह गई। सम्यक दृष्टि तो उपस्थिति में जिंदा होने पर भी अपना नहीं है, उसको अपना नहीं है जानता है, और मिथ्या दृष्टि अपना नहीं है उसको अपना जानता है, अज्ञाता दृष्टा हो जाता है, बात खत्म, नाता रहता है, नाता दृष्टा बन जाता है। जैसे दूसरे के परिवार को जानता है वैसे अपने परिवार को जानता है क्या? पड़ोसी के परिवार को जैसे जानता है वैसे अपने परिवार को जानता है, वो भी संयोग में है, वो भी संयोग में है। जगत के व्यवहार जैसा है तो जगत के व्यवहार के अनुकूल वो अभिनय करता है, क्या करता है? अभिनय कर लेता है कि भाई जगत में ऐसा व्यवहार है, अगर ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए जगत का जैसा व्यवहार है ऐसा समझ लेते हैं, और ऐसा सज्जनता से व्यवहार करता है, दुर्जनता से व्यवहार नहीं करता है, बस उतनी बात है उसकी। हाँ देखो, मैं तो कोई जानेगा कि सर्वकाल प्रमादी रहता है, यानी त्याग क्यों नहीं करता है? जब ये अपना को अपना नहीं जानता है तो छोड़ क्यों नहीं देता है? प्रमाद है उसको क्या? नहीं, प्रमादी भी
नहीं है,
वो छोड़ने का पुरुषार्थ में लगा है। जब इसका विकल्प टूट जाएगा तो छूट जाएगा। भरत चक्रवर्ती थे हाँ, ऋषभदेव भगवान थे, लोने वो तो लेकर आए थे ना, वो तो लेकर आए थे सम्यक दर्शन। तो 83 लाख पूर्व रहे गृहस्थी में हाँ, तो उनका पुरुषार्थ चालू था, पुरुषार्थ चालू था तब तो मुनि हुए, अगर पुरुषार्थ नहीं होता तो मुनिपणा आता नहीं। मुनिपणा कहाँ से आया? कि गृहस्थी में पुरुषार्थ चालू था, अपनत्व तो श्रद्धा ज्ञान में नहीं था, चारित्र की अस्थिरता से जगत के व्यवहार में खड़े थे, वो अस्थिरता छूट करके स्वरूप में स्थिरता हो गई। क्या हुआ? अस्थिरता छूट करके स्वरूप में स्थिरता हो गई, स्थिरता से वितरागता बढ़ गई, वितरागता के बढ़ने से राग छूट गया। गुरुदेव वर्णन करते हैं अपने प्रवचन में कभी कभी, जब ऐसे राजा महाराजा चक्रवर्ती जब राजपाट और कुटुंब परिवार को छोड़ते हैं तो बहुत विलाप करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? इसके जो रानियां होती है बहुत विलाप करते हैं, उनके प्रति वो क्या जवाब देते हैं? ऐसे तो मुनि होते उसको करुणा तो अनंत होती है, तो क्या वो अपने कुटुंब परिवार के प्रति निष्ठुर हो गई है क्या?
नहीं
कि नहीं, वो ऐसे कहते हैं गुरुदेव अपने शब्द में कहते हैं कि देखिए तुम भी एक जीव हो, तुम क्यों मानता है कि मेरा वो है, मेरा वो लगता है, वो लगता है? तुम भी एक जीव हो, मैं भी एक जीव हूँ, मेरा थोड़ा राग था वो छूट गया, क्या जो चारित्र की अस्थिरता से थोड़ा राग था वो मिट गया है, जो मिट गया है मैं कहाँ से लाऊं? पहले अपनत्व छूट गया तो अपनत्व कहाँ से लाऊं? जिसको वो दूसरी चीज दूसरी दिखती है वो अपनापन कैसे इसमें आएगा? जो दूसरी है वो दूसरी दिखती है, तो अपनत्व ला सकता नहीं था मैं। अब मेरा थोड़ा राग बाकी था तो मैं तुम्हारे संग में रहता था, अब मेरा विकल्प नहीं है साथ में रहने का, मेरा विकल्प छूट गया, टूट गया, राग ही नहीं आता है मुझे, मैं लाऊं कहां से? तो निष्ठुरता नहीं है, वितरागता है। क्या निष्ठुरता नहीं है किंतु वितरागता है।
राग छूट गया।
अभी तो क्या है कि राग तो रह जाए और त्याग कर देवे
वो नहीं चले।
वो तो जंगल में जाके भी उसका स्मरण आएगा, उसको क्या आएगा, जंगल में चला जाएगा तो भी घर का स्मरण आएगा, क्योंकि राग जिंदा है। जिसको राग जीवित है उसका त्याग सही त्याग नहीं है, जिसका राग मर गया उसका त्याग सच्चा। उल्टी लोग लेते हैं, पहले त्याग करो तो राग मरेगा, ये उल्टी पद्धति है। राग मरेगा तो त्याग होगा, वो उल्टी पद्धति है। ऐसी बात है,
भरत जी घर में वही रहे।
हाँ, भरत जी घर में वही रागे और राग छूट गया, 96,000 स्त्रियों को छोड़ दिया। मेरा राग नहीं तो मेरा संबंध नहीं, संबंध है तो राग से है, राग नहीं है तो संबंध भी
नहीं है,
नहीं है, बात खत्म।
संबंध भी स्त्रियों नहीं तो राग से था।
है?
संबंध भी स्त्रियों नहीं तो राग से था।
राग से संबंध था वो भी, वहां तो भिन्न था, वो तो चारित्र की अस्थिरता, जो राग पैदा होता था उतनी बात है। इससे भिन्नता का प्रयोग तो चालू ही था, तो राग टूटता जाता था, क्या उसका रस टूटता जाता था, राग भी क्षय होता जाता था, और पूरा क्षय हो गया, बात खत्म। वृत्ति बदलने के हैं हम, क्या करते हैं पहले वस्तु बदलने को दौड़ते हैं, पर वृत्ति ऐसी के वैसी रह जाती है, तो फिर उपवास के बाद पालना हो जाएगा, अतरवाना हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। ये बात सही है नहीं?
किसी कार्य के अंदर परमात्मा का पद का अनुभव करते हैं, कोई क्षण परमात्मा पद का अनुभव करते हैं, बाकी
प्रमाद में जीते हैं, ऐसी नहीं ऐसी नहीं, निरंतर सततम भवंत ऐसा कहते हैं। इसका भावार्थ लिखा है, किसका भावार्थ लिखा है, सततम भवंत का भावार्थ लिखा है, कि वो कोई प्रमाद में नहीं रहता है, वो निरंतर अपना पुरुषार्थ चालू है। सो इस प्रकार तो नहीं, सदा सर्वकाल शुद्ध पणे रूप रहता है, अनुभव करता है, और वो अनुभव पुरुषार्थ बिना होता नहीं है। सम्यक दृष्टि होता है तो कितने प्रचंड पुरुषार्थ से होता है उसका अगर पिक्चर दिखाया जाए, हाँ, विजुलाइज किया जाए, तो कभी सम्यक दृष्टि में प्रमाद की शंका होगी नहीं? ऐसी बात है कि ये प्रमादी हो रहा है, प्रमादी होता ही नहीं। ये व्यापारी 24 घंटा क्या करता है, उसके दिमाग में व्यापारी चलता है, दुकान पर बैठा है तो व्यापार करता है, घर पे आकर सो गया तो व्यापार नहीं करता, ऐसी बात है नहीं? वही चलता है जो दुकान पे चलता है वृत्ति में, वही घर पे चलता है। हाँ, नहीं फाड़े तो भी चलता है, फाड़े तो चलता है, नहीं नहीं फाड़े तो भी चलता ही है उसका, तो ऐसी बात है उसकी तो। हाँ, ऐसा सदा सर्वकाल शुद्ध पुणे रूप रहता है, अनुभव करता है, ऐसा नहीं, ऐसा ही रहता है, सहज रहता है ना, इसलिए अनुभव करता है। उसमें तो थोड़ा कर्तृत्व लगता है कि पुरुषार्थ का कर्तृत्व है, कोई करू करू ऐसा पुरुषार्थ है कि नहीं, सहज ऐसा रहता है, ऐसी बात है। स्वभाव त्रिकाल एक रूप है, और स्वभाव अनुसार जो परिणमन है वो परिणमन में जो शुरू होता है फिर वृद्धिगत होता ही रहता है, वो पूर्ण हो जाए तब वहां तक उसकी वर्धमानता चालू रह जाती है। हर समय एक ही गुण स्थान में कोई जीव रहता है तो आगे बढ़ता ही जाता है, या चतुर्थ गुण स्थान में हो या छठे गुण स्थान में हो, वो हर समय आगे ही बढ़ता है। वायानी 254 में तीव्र मुमुक्षुता किसको कहे, कि प्रतिक्षण अनन्य भाव से मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ता है उसको तीव्र मुमुक्षु यानी ज्ञानी कहने में आता है। ज्ञान केवल, वो तो धवल धवल पुस्तक में आया कि नहीं, मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, जल्दी आओ केवल ज्ञान, मैंने हर समय वो केवल ज्ञान के प्रति गतिमान ही है, उसके प्रत्येक गुण का परिणमन पूर्ण शुद्ध होने के प्रति ही गतिमान है। ऐसी एक परिणमन की चाल सहज हो जाती है, परिणमन तो चालू रहता है, दिशा बदल गई बस बस वो चलता ही रहता है, अपने निज घर के प्रति वो चलता ही रहता है। परिणमन तो हर समय चलता रहता है, दिशा बदल गई, जो उधर की दिशा थी तो अपने स्वरूप से दूर जाता था, अब भीतर की दशा आई, अंतर्मुख हो गया तो स्वरूप के प्रति के परिणमन चलने लगा
अपने आप।
बस परिणमन का चक्कर तो कोई चाहे तो भी बंद कर सकता नहीं, तो ऑटोमेटिक है, हाँ चलता है वैसा क्या वैसा, प्रति समय 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 में क्षोद्र जगत के कोई भी पदार्थ निरंतर परिणमनशील है, एक समय में वो पलटा खाता है, अवस्था से अवस्थांतर, अवस्था से अवस्थांतर हो ही जाता है। एक समय मैंने क्या, एक सेकंड में असंख्य बार, लाख करोड़ अरब इतना ना नहीं, असंख्य बार एक सेकंड में उतना स्पीड से परिणाम का चक्कर घूमता है, फिरता है, उस चक्कर में कोई माथा लगाएगा तो उसका माथा फूट जाएगा। परिणाम के चक्कर में माथा लगाने वाले का माथा टूट जाता है, बस ध्रुव में बैठ जाना है, क्या ध्रुव की गद्दी में अड्डा जमा लेना,
मार्ग सही होना चाहिए,
हाँ चाल धीरी हो कोई बात नहीं है, वो तो देर सवेर पहुंचने वाला है, लेकिन उसकी दिशा उसका मार्ग सही होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सम्यक का अर्थ ही आत्माभिमुख होता है, सम्यक का अर्थ होता है आत्माभिमुख, ऐसी बात है। देखो ये 120 में सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया है कि उद्धत बोध चिन्हम है, कैसा है उद्धत बोध चिन्ह, प्रत्यक्ष अनुभव दशा स्वरूप की,
अवगुणवाचक शब्द
है,
वैसे उद्धत शब्द अवगुणवाचक होता है, लेकिन
नहीं उद्धत शब्द का है प्रकट अर्थ है, उद्धत शब्द का ऐसा है किसी को गिने नहीं उसको उद्धत कहते हैं, हाँ तो सम्यक दृष्टि है वो आठों कर्म का उदय को नहीं गिनता है, किसको नहीं गिनता है, आठों कर्म का उदय पूर्व बंध से चालू है, संचित कर्म का उदय आता है पूर्व बंधा हुआ उसको नहीं गिनता है, उद्धत हो गया है। ऐसी बात है, सब विवेक सभी जितने भी विशेषण है ना वो आत्मा को लागू पड़ता है, जैसे शून्य है आत्मा किससे, पर से शून्य है, नास्ती है आत्मा की नास्ती किससे, पर से नास्ती है, सब विशेषण लागू पड़ता है। यहाँ तक रखो।